Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dawa ka dosh ya vaidya ka dosh ya dosh tumhara? हम अपने दोष को नहीं देखते हैं और दवा पर दोष देते हैं या वैद्य पर दोष देते हैं, ये तुम्हारा कितना सत्य होगा? कोई मतलब नहीं। इसलिए शास्त्र ये दो बात बताते हैं और यही श्रुति ने बताई है कि तुम्हें ग्रहण करना है, क्या करना है, कैसा करना है। इसलिए महात्मा लोग बताते हैं कि पहले तुम परमात्मा को देखो और दिखाने के लिए मंदिर, मंदिर में परमात्मा को देखो, परमात्मा ही है, समझे? जैसे मंदिर में एक पत्थर में तुम परमात्मा को देखते हो तो किससे देखते हो, भाव से देखते हो कि आंखों से देखते हो? देख तो आंख रही है, परंतु आपको जो नतमस्तक कर रहा है, हाथ जुड़वा रहा है या साष्टांग दंडवत करा रहा है तो वो कौन करा रहा है? वो तुम्हारा परमात्म भाव, समझ? वो परमात्म भाव तुम्हें क्या कर रहा है? हाथ जुड़वा रहा है। कोई कोई हम देखते हैं तो सुबह जाते हैं ना, बाबूनाथ मंदिर ऊपर है, उस शिखर को ही क्या करते हैं, बहुत देर तक नमस्कार करते हैं। भगवान को देख रहे हैं क्या? बाबूनाथ को तो देख नहीं रहा है, परंतु नमस्कार कर रहा है। देख मंदिर के शिखर को रहा और शिखर भी नहीं देखता है, उसका ऊपर का जो लाइट है वो लाइट को देख रहा है, क्यों? अंधेरे में ही। मैं 5:15 बजे घूमने के लिए निकलता हूं ना, तो उस समय तो ऊपर अंधेरा रहता है, ऊपर जो लाइट है उस लाइट को देख रहा है, मंदिर भी नहीं दिख रहा है और शिखर भी नहीं दिख रहा है, परंतु मंदिर भी मान रहा है, शिखर भी मान रहा है, बाबूलनाथ को भी मान रहा है और देख उस बत्ती को रहा है, परंतु मान किसको रहा है? तो वो नमस्कार उस बत्ती को होगा कि ही बाबूलनाथ को होगा? देख तो नहीं रहा है, भाव, समझ ना। क्योंकि भाव, ये केवल भाव बदलने के साधन है ये, इसलिए मानना अर्थात बिना माने भाव निर्माण नहीं होता है। इसलिए पहला श्रुति तुम्हें भाव बताती है कि इस संपूर्ण जगत के अंदर इस जगत को परमात्मा ने व्याप लिया है, अर्थात परमात्मा ही इसके अंदर प्रविष्ट है। मंदिर में भी परमात्मा है कि नहीं है, शिखर में भी परमात्मा है कि नहीं है, वो लाइट जो दिखाई दे रहा है उसमें भी परमात्मा है कि नहीं है? नहीं होता, नहीं मानता तो नमस्कार क्यों करता? इसलिए स्थिति कहती है कि पहले सभी प्राणी मात्रों में, जड़ हो चेतन हो, स्थावर हो जंगम हो, सभी में पहला तुम क्या करो? परमात्म भाव निर्माण करो। क्या करो? परमात्म भाव निर्माण करो कि सभी में परमात्मा है। पहले सभी में सप्तमी है, समझ लेना, जगत्याम, इसलिए तो ये सप्तमी का निर्देश कर दिया है। इस सभी के अंदर सत्ता के रूप में परमात्मा है, चेतनता के रूप में, चित्त के रूप में परमात्मा है, प्रियता के रूप में परमात्मा है, आनंद के रूप में परमात्मा है।
उसमें परमात्मा के बिना तो वो वस्तु रहती नहीं, दिखती नहीं, होती नहीं है। सत्ता परमात्मा की ही है, जो दिख रहा है उसकी नहीं है, सत्ता परमात्मा की है। इसलिए श्रुति कहती है कि परमात्मा को पहले मान लो, मैं जो बता रही हूं मेरी बात को तुम सत्य मानो। ये ज्ञान है, कौन सा? परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। श्रुति पहले परमात्मा का परोक्ष ज्ञान कराती है और उस परोक्ष ज्ञान को ही साधक अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस परमात्मा को साक्षात अपरोक्ष कर सकता है। श्रुति के द्वारा, आचार्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान और बहुत हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान, श्रुति परोक्ष ज्ञान करा देती है तो समर्थ आचार्य अपरोक्ष ज्ञान करा सकते हैं, परंतु साक्षात अपरोक्ष ज्ञान जीव को अपने पुरुषार्थ से ही करना होता है। इसलिए श्रुति पहले बता रही है कि मैं जो बता रही है इन सभी में कण कण में परमात्मा है, परमात्मा की व्याप्ति है। इस प्रकार से ये तुम पहले मानो और मान करके परमात्म भाव आपको निर्माण करना है। ये जानना किसके लिए? देखो, जानना होता है मानने के लिए, और मानना किस लिए होता है? करने के लिए, और करना किस लिए होता है? होने के लिए। मेरी बात समझ में आई? पहले सुना जाता है और सुन करके ये जो आपने सुना, उस सुनने से जो आपको परोक्ष ज्ञान हुआ, उस परोक्ष ज्ञान से मानना होता है और मान करके भाव करना होता है, भाव से भावित होकर के बनना होता है। ये श्रुति साधक के लिए भी बता रही है, ज्ञान भी बता रही है, परमात्मा को भी बता रही है और जीव को भी बता रही है। और पुरुषार्थ में जो प्रतिबंधक है, तेन शब्द बहुत बड़ा गहरा इशारा करता है, उस ज्ञान को जानो परमात्मा कैसा है। परमात्मा कैसा है तो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, अव्यय है, अविनाशी है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एक कई शब्द के द्वारा श्रुति ने ये परमात्मा का निर्देश कर दिया है और उस निर्देश का पालन करने के लिए उस ज्ञान का आश्रय करना चाहिए। ध्यान रखो, जो भी हम करते हैं, जो भी हम मानते हैं, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम देखते हैं, सभी इस कर्म का आश्रय यदि ज्ञान है, क्या इस कर्म का आश्रय यदि ज्ञान है तो तुम्हारा कर्म सफल होगा, तो कर्म कभी भी दुख निर्माण नहीं कर सकता है। क्या? और उसका संसार कभी दुखमय नहीं हो सकता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अवघात संसार सुखाता करी न आनंदे भरी न तिन्नी लोक। मैं इस संपूर्ण संसार को आनंदमय बनाऊंगा, आनंद से परिपूर्ण कर दूंगा। किससे? ये ज्ञान से। तो यही श्रुति भी बता रही है कि पहले परमात्मा को इस प्रकार से जानो। परमात्मा मंदिर में तो है ही, क्योंकि मंदिर भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, परमात्मा के अंतर्गत मंदिर भी आ जाता है। इसलिए मंदिर में भी परमात्मा है, मंदिर भी परमात्मा है। इसलिए ये सभी में परमात्मा को पहले भाव करो। भाव क्या करो? ये भक्ति बताई है, क्योंकि भाव ही भक्ति है, समझना। परंतु ये भाव तब होगा, पहला ज्ञान होगा, फिर ज्ञान में निष्ठा होगी, प्रेम होगा, तब वो मानना सार्थक होगा। नहीं तो मानते तो सभी है, क्या सभी मानते हैं, परंतु ये मानना भी सार्थक नहीं होगा। इस मानने के अंदर भी क्या वस्तु है होना चाहिए, पहले तो ज्ञान होना चाहिए, फिर ज्ञान में निष्ठा होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, और उस निष्ठा में प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम से मानो, फिर तुम्हारा मानना सार्थक होगा। और उस मानने में यदि प्रेम नहीं है, उस मानने में यदि निष्ठा नहीं है, उस मानने में यदि ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारा मानना भी निरर्थक है। इसलिए मानने में पहला ज्ञान हो, फिर ज्ञान में बुद्धि आपकी स्थिर हो, और उस स्थिर बुद्धि में प्रेम हो। प्रेम का मतलब क्या होता है जानते हो? प्रेम का मतलब क्या होता है? बहुत सालों से तो आप प्रेम प्रेम सुनते रहे हो, प्रेम उसका नाम है। प्रेम क्या करता है? तुम्हारे अस्तित्व को मिटाता है, और अस्तित्व है तो प्रेम नहीं काम है, ध्यान रखो। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया प्रेम की व्याख्या करते समय, प्रेम संत कुमार तो कहते अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम अनिर्वचनीय है। क्या प्रेम अनिर्वचनीय है? क्योंकि प्रेम का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, प्रेम में कोई कर्म नहीं है, प्रेम में कोई धर्म नहीं है, प्रेम में कोई कुछ भी वस्तु नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। कर्म से प्रेम की सिद्धि नहीं होती है, और ना अन्य किसी साधनों से, अनिर्वचनीय स्वाभाविक है। जैसा परमात्मा अनिर्वचनीय है, तो परमात्मा का प्रेम क्या निर्वचनीय होगा? प्रेम भी अनिर्वचनीय है, परंतु उन अनिर्वचनीय के अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या नारद जी ने की। वो क्या की? ज्ञान भी, परमात्मा भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, और प्रेम भी अनिर्वचनीय है, परंतु तीनों की अनिर्वचनीयता में अंतर है। प्रेम की अनिर्वचनीयता क्या है? प्रेम की अनिर्वचनीयता है काम रहित होना, काम रहित होना पहली अनिर्वचनीयता। काम गया तो तुम्हारा संसार गया। क्या? काम गया क्योंकि काम ही संसार है। काम गया तो संसार गया। वो काम जहां रहता है, काम जिसके आश्रित होता है, उसको भी मिटना चाहिए। वो क्या है? वो तुम्हारा अहम, परिच्छिन्नता। क्या? वो परिच्छिन्नता, जो मैं इसका जो अनुभव कर रहे हैं, वो तुम्हारा मैं मिटना चाहिए। कहा है कि मैं का मिटत निशान, तू ही रहत जात है, मैं का मिटत निशान। ये तुम्हारा मैंपना समाप्त होना और मेरापन समाप्त होना वो अनिर्वचनीयता है। प्रेम की अनिर्वचनीयता क्या है? प्रेम बोला नहीं जाता है, क्योंकि बोलने के लिए जब तक आप नहीं हो, मैं नहीं होगा तो तुम बोलोगे, आप नहीं हो मैं नहीं होगा तो करोगे कुछ नहीं। प्रेम भगवान का रूप है, ब्रह्म का रूप है प्रेम। इसलिए तो रसो वैसा श्रुति कहती है कि नहीं, प्रेम रस है, समझना, रस का ही नाम प्रेम है। और ये रस कौन सा रस? अमृत रस, ब्रह्म रस, ज्ञान रस। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्तो भवति मत्तो भवति आनंदो भवति। ये ब्रह्म रूपी रस जब प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है तो तृप्ति होती है। तृप्ति प्रेम हो और फिर काम हो शक्य नहीं है, ध्यान रखो। प्रेम हो और परमात्मा से कुछ मांग भी हो, क्या तो प्रेम है? ध्यान रखो। इसलिए ये अभिमान मत करो कि हम परमात्मा के बहुत प्रेमी हैं। प्रेम बहुत गहन चीज है, समझ। हाँ प्रेम तो है, परंतु उस प्रेम में काम मिला हुआ तो बिगड़ा हुआ प्रेम है, दूषित प्रेम है, दूषित प्रेम। और वो दूषित प्रेम परमात्मा को नहीं दे सकता है, सत्य परमात्मा को नहीं दे सकता है, सत्य परमात्मा का बोध नहीं करा सकता है। भक्ति रेव गरी ऐसी, भक्ति रेव इनम गया गमयती, समझना। प्रेम परमात्मा के तरफ ले जाने वाला है, ले जाने वाला नहीं है। प्रेम आ गया तो समझ लो परमात्मा आ गया, जा ही नहीं सकता है परमात्मा। इसलिए भाव में प्रेम होना चाहिए, ध्यान रखो। क्या होना चाहिए? प्रेम होने का मतलब क्या? कामना नहीं होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंपना नहीं होना चाहिए। ध्यान में आई बात? तब तुम्हारा प्रेम होगा। और वो प्रेम से निकला हुआ जो भाव, वो भाव तुम्हें आनंद देगा। आनंद ध्यान रखो, क्या देगा? आनंद देगा। और वो आनंद कौन है? परमात्मा है। इसलिए श्रुति पहले कहती है कि तुम पहले भाव निर्माण करो, और भाव निर्माण करने के लिए शुद्ध प्रेम, और शुद्ध प्रेम के पहले निष्ठा, और निष्ठा के पहले परमात्मा। परमात्मा में निष्ठा हो, पहले परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो। तुम्हारे अंदर कामना है, इसका अर्थ तुम्हारा क्या हो गया? कामना, जिसकी कामना है उस विषय में तुम्हारी निष्ठा है कि परमात्मा में ज्ञान में निष्ठा है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए उस व्यापक तत्व में निष्ठा होना चाहिए। क्या? उस व्यापक तत्व में पहले बुद्धि स्थिर करो, और बुद्धि स्थिर होते ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा मैंपना मिट जाएगा। और मेरापन किसको मेरा कहोगे, किसको मैं कहोगे, पहले बताओ, किसको मैं कहोगे? मैं कहने के लिए कुछ रहा है क्या? नहीं। व्यापकता में मैं नहीं होता है, व्यापकता में चाहना नहीं होती है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो चाहोगे किसको? ये प्रेम का लक्षण है। इसी को लेकर के अनिर्वचनीय सनत कुमारों ने प्रेम का लक्षण किया। प्रेम कैसा है? तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। और नारद जी ने कहा कि सा न कामायमाना विरोध निरोध रूपत्वात्। भक्ति कैसी है? वो प्रेम जिसके अंदर है, और वो प्रेम जो कर रहा है, कृति में ला रहा है प्रेम को, उसका नाम भक्ति है। परंतु उस कृति में काम नहीं होना चाहिए, उस प्रेम में चाहना नहीं होना चाहिए और उस प्रेम में मैं नहीं होना चाहिए। वो जो करना है वो करना भक्ति है। आपका देखना भक्ति होगी, आपके सुनना भक्ति होगी, आपका चलना भक्ति होगी, आपका बोलना भक्ति होगी। यद्यत करोमि सकलम शंभो तवाराधनम, हमारा कर्म भी क्या बन जाएगा, हमारा कर्म परमात्मा बन जाएगा, हमारा कर्म आनंद रूप बन जाएगा। तस्तृति इदत केन, इस शब्द से संकेत कर रहे, ध्यान रखो, समझे। ये मंत्र बहुत कूट मंत्र और बड़ा गहन मंत्र है। इस पर तो जितना भी बोलना चाहोगे ना तो महीनों बोल सकते हैं, इतना गहन मंत्र है ये। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस प्रकार से भाव करके अब छूटा। क्या छूटा? भुंजी था, पहला ये भाव करो परमात्मा का, इस प्रकार से भाव करो, इस परमात्मा को मानो, इस परमात्मा को ऐसा जानो, ऐसा मानो और ऐसा समझो। ये जो समझदारी है, इस समझदारी से जो त्यागना है, त्यागने के लिए भी समझदारी होना जरूरी है। और बिना समझदारी का त्यागोगे तो पछताओगे, रोओगे, क्या होगा, दुख ही होगा। बिना समझे छोड़ दोगे तो वो दुख का ही कारण बन जाएगा, वो त्याग नहीं होगा, वो रोग बन जाएगा, समझना, वो क्या बन जाएगा, रोग बन जाएगा। इसलिए स्मृति कहती है कि त्याग समझदारी से हो, समझदारी होना चाहिए त्याग में। समझदारी क्या है? अरे छूटे, छूट भी जाए और हमें मालूम तक न पड़े, ये समझदारी होना चाहिए। यदि मालूम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, अहंकार निर्माण होगा कि नहीं है, मैंने इतना दे दिया। इसका आप लोग गुप्त दान करते हो कि नहीं, गुप्त दान, क्या लिफाफे में छिपा करके नोट डालते हैं और उसको आप क्या करते हैं, गुप्त दान करते हैं, परंतु क्या वो गुप्त है, गुप्त है क्या वो? दूसरे को न दिखना या न दिखाना, इसका नाम गुप्तता नहीं है, समझिए ना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो, तो गुप्त कैसा? गुप्त तो उसको कहा जाता है कि तुम भी नहीं जानो और दूसरे भी नहीं देखे, केवल एक परमात्मा ही समझे, उसको कहा जाता है गुप्त दान। यहां भक्त, ये जो शब्द त्यक्तेन शब्द जो है बड़ा मार्मिक है, ध्यान रखो। त्याग कैसा हो? त्याग दिखावटी नहीं होना चाहिए, दिखने वाला नहीं होना चाहिए, और जो दिखने वाला होता है वो त्याग नहीं होता है, क्या होता है, वो भोग होता है, भोग, कभी सुखात्मक भी भोग हो सकता है, कभी दुखात्मक भी भोग हो सकता है, समझ ना। इसलिए कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन परमात्मा निष्ठा, निष्ठा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया था, मानना तो बदल सकता है, मानना जो होता है वो मन के अंदर होता है, मानना तो बदल सकता है, परंतु उसके साथ निष्ठा होगी, क्या होगी, उसके साथ ज्ञान होगा, स्थिरता होगी और प्रेम होगा, तब तुम्हारा मानना सत्य होगा। निष्ठा शब्द का प्रयोग इसलिए हमने कहा था। तो ऐसा ही निष्ठा परमात्मा में होगी, उस तुम्हारे मानने से क्या छूटेगा, क्या त्याग होगा, तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम, तुम्हारी अविद्या का त्याग होगा, काम का त्याग होगा, कर्म का त्याग होगा। उस परमात्मा को इस प्रकार से मानो, इस प्रकार से जानो, इस प्रकार से समझो, इससे क्या होगा कि तुम्हारा अविद्या समाप्त होगी, अज्ञानता समाप्त होगी। अज्ञानता समाप्ति का अर्थ होता है तुम्हारा मैंपना समाप्त होगा, तुम मैं नहीं रहोगे। ये मैं मिटना, मैं मिट गया था अविद्या गई। तुलसी ने भी क्या कहा, मैं और मेरा यही तो माया है। क्या है? यही माया है, यही भ्रांति है तुम्हें, यही दुख देती है। परमात्मा में ऐसी निष्ठा होगी, ज्ञान में निष्ठा होगी, ऐसा ही प्रेम तुम्हारे अंदर होगा और उसके अनुसार यदि भाव बनेगा तो तुम्हारा मैं का त्याग होगा। इससे इस संकेत तीन शब्द इधर कर रहा है, इस प्रकार से तुम परमात्मा को मानोगे, सर्वव्यापक कणकण में परमात्मा को मानोगे तो तुम्हारा मैं मिट जाएगा, तो अविद्या मिट गई, काम मिट जाएगा, क्योंकि काम बाहर होता है। अब बाहरपना तुम्हारा खत्म होगा, अब बाहरपना खत्म हो गया तो अंदरपना भी समाप्त होगा। आप देश काल से अपरिच्छिन्न हो जाओगे, ये काम भी मिट जाएगा और कर्म भी। फिर कर्म कहां होगा? कर्म भी मिट जाएगा। त्यागना क्या है? अविद्या को त्यागना है, काम को त्यागना है, कर्म को त्यागना है। पहले कर्म का त्याग, फिर काम का त्याग और फिर अविद्या का त्याग। ये तीन त्याग हो, तीनों का त्याग हो जाता है तब भोग होता है। उसको तीन त्याग, तीन भुंजिता शब्द से बता रही है। उस समय उसके बाद जो भोग होगा वो क्या भोग होगा, क्या भोग होगा? अरे अपना अपना होना ही, आनंद आनंद ही होना। अमृतो भवती, क्या होता है वो? अमृत ही होता है। और अमृत ही जब हो जाओगे तो भोग किसका होगा? मृत का होगा। खत्म। क्यों? मैंपना मिट गया तो मृत भोग खत्म हो गया। अविद्या मिट गई, मृत्यु समाप्त हो गई। ध्यान रखो, अविद्या ही मृत्यु है, काम ही मृत्यु है, कर्म ही मृत्यु है। ये जो हम देख रहे हैं कि ये मर गया वो मर गया, ये कर्म मृत्यु हो रही है। भक्ति वासनाओं को मृत्यु मार देती है, धर्म कर्म को मारता है। तीन साधन जो हमारे शास्त्रों ने बताए, क्या बताए? धर्म कर्म को मारता है और भक्ति काम को मारती है, ज्ञान अविद्या को मारता है। और तुम्हारे मानने में ये तीनों भी है, इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति, अमृत ही हो जाता है। अमृतो भवति, वो अमृत ही हो जाता है। वो अमृत का भोग, वो भोग है। कह रहे हैं कि भुंजी था, अब ये मिल गया। उसके बाद कहते हैं कि मा गृद कस्यस्विद्धनम्, कस्यस्विद्धनम् मा गृद। अब ये धन क्या है, किसका धन? इसके अनेक शास्त्रकार, अनेक विद्वान लोग अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। शब्द वही है परंतु व्याख्याएं अनेक हो जाती है। तो अभी आज टाइम तो हो गया, इसलिए आज इनका ये इस पर फिर कल विचार कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।